ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 6। गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थभिः न परं विन्दते मूढो ब्राह्म्यं संसारवर्त्मषु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जो तथा कथित सुंदर जीवन में ही यथा संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहते हुए तथा संपत्ति की खोज करते हुए रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तात्पर्य जो लोग गृहस्थ जीवन की के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे कूट धर्म में लगे रहते हैं। प्रह्लाद महाराज ने इस कूट धर्म को अंधकूप कहा है। उन्होंने जानबूझकर इसे अंधकूप कहा है क्योंकि इस कुएं में गिर जाने पर मनुष्य मर जाता है। भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता। ब्राह्म्यन संसार वर्तमशु पद महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करती हैं, और यदि भगवत कृपा से उन्हें किसी भक्त से भेंट हो जाती है तो उनके जीवन सार्थक हो जाते हैं। यद्यपि राजा प्राचीन बहिष्यत सकाम कर्म में व्यस्त थे, किंतु नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार से राजा अत्यंत भाग्यवान था, उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी जिन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। समस्त संतों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्म बंधन फांस से छुड़वाएं। अनुवाद दोहराइएगा। जो तथा कथित सुंदर जीवन में ही यथा संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहते हुए तथा संपत्ति की खोज करते हुए रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदान पुत्रदार धनार्थभिः न परं विन्दते मूढो ब्राह्म्यं संसार वर्त्मसु। नारद मुनि राजा प्राचीन परिषद को उपदेश देना आरंभ कर रहे हैं, और शुरुआत में ही भारी उपदेश देने लग जाते हैं, वजनदार उपदेश जो कि सुनना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहां कौटुंबिक या पारिवारिक जीवन के बारे में नारद मुनि ज्ञान दे रहे हैं। बताते हैं कि वास्तव में जो लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं संसार में ज्यादातर, उनकी चेतना केवल इन चीजों में लगी हुई रहती है, पुत्र, दार, धन, अर्थ, ये सारे चीजों में, बच्चे, अपने स्त्री और अपना धन इत्यादि, और इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं इनमें ही रुचि रखते हैं और यही उनका धर्म समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज ऐसे लोगों को बताते हैं गृह व्रतानाम, उन्होंने व्रत लिया है कि गृह के बाहर कुछ है ही नहीं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा घर, मेरा समाज, मेरा व्यवसाय, मेरा समाज में इज्जत, नाम, मेरा गाड़ी, बस यही मेरा सब कुछ है, संसार में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये मैं व्रत लेता हूँ कि इन चीज़ों के बाहर मेरा ध्यान नहीं जाएगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं इन सब चीज़ों की सेवा करते रहूँगा, इनको कभी भी त्याग करूँगा नहीं, मैं ये व्रत लेता हूँ। इसलिए कभी भी इनकी चेतना कृष्ण में नहीं आ सकती है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथोभ्युपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज ये श्लोक बताते हैं, प्रभुपाद जी बार बार इस श्लोक को दोहराया करते थे कि ऐसे लोग अदांत गोभीर, गो भी मतलब, गो मतलब हमारी इंद्रियां, गो मतलब गाय और गो मतलब इंद्रियां, तो भगवान का और एक नाम है गोविंद, मतलब जो गायों को आनंद देते हैं और जो इंद्रियों को आनंद देते हैं दोनों, तो अदांत गो भी मतलब जो केवल इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति के अलावा उसको कोई कार ही नहीं मालूम कि कोई दुनिया है, कोई संसार है, कोई दिलचस्पी, कोई रुचि, कुछ नहीं। पुनः पुनश्चर्विता चर्वणानाम, उसी चीज को बारंबार चबाते रहना, चबाते रहना, जैसे आजकल नवयुवक को च्युइंग गम चबाते हैं, थोड़े क्षण के लिए उसका स्वाद रहता है लेकिन फिर भी गाय की तरह उनको, उनका जबड़ा जो है चलते रहता है, और आजकल खास करके कॉलेज के विद्यार्थियों में ये फैशन रहता है कि च्युइंग गम वो चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, हालांकि उसमें कोई स्वाद नहीं है लेकिन दूसरे विद्यार्थियों को दिखाना है कि जबड़ा हिल रहा है, वो एक तरह का फैशन हो गया है कि जबड़ा हिला रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, और ऐसे घूमने से लोगों में एक प्रकार की कहिए कि उनसे मिलजुल कर हम रह सकते हैं। तो उसी प्रकार से संसार में भी जबड़ा हिलाते रहें, हम इंद्र तृप्ति करते रहें, पुनः पुनश्चर्विता चर्वणानाम, तो लोगों में हमारा स्थान रहता है समाज में कि ये देखो कितना उच्च श्रेणी का इंद्र तृप्ति कर रहा है, कितना जबड़ा हिला रहा है, च्युइंग गम कितना खा रहा है, हालांकि स्वाद उसमें कुछ नहीं है लेकिन दूसरों के दिखाना है कि हम चबाते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं। पुनः पुनश्चर्विता चर्वणानाम, पहले बारम्बार बारम्बार चबा लिया, चबा लिया, चबाते रहे, कोई स्वाद नहीं, कोई रुचि नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए, समाज में कुछ इज्जत हमारी बनाए रखने के लिए हमको चबाते रहना है। कभी ये नहीं सोचते कि चबाना बंद करेंगे तो कितना दर्द कम हो जाएगा, चबाते चबाते दुख रहा है, हमारी जबड़े दुख रही हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए चबाते रहना है, सोचते नहीं रहते हैं कि बंद करेंगे तो कितनी राहत मिलेगी हमारे जबड़ों को, आनंद मिलेगा, थोड़ा कुछ दर्द नहीं होगा, और एक खामखा ये चबाते बिना स्वाद का चबाते रहते हैं, इसमें क्या फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं मतिर न कृष्ण, इनके मन में कृष्ण के प्रति मति कभी भी जागृत नहीं हो सकती, खुद के प्रयास से नहीं हो सकती, दूसरे लोग अगर आके उनको उपदेश दें फिर भी नहीं हो सकती, और दोनों मिलकर प्रयास करें, अर्थात खुद भी प्रयास करें, दूसरे भी आके उनको प्रयास करें, फिर भी मिथो विपद्येत नहीं होगा, क्योंकि उसका व्रत इतना पक्का है कि वो नहीं हिल सकता उससे। काश भक्ति में हम सबका व्रत भी उतना ही कड़क और दृढ़ रहता तो कोई हमें कृष्ण भक्ति से हटा नहीं सकता। तो जिस प्रकार से ये लोग अपने गृह में उतना व्रत लेते हैं, उतना ही व्रत अगर हम भक्ति में लें तो हम बहुत ही जल्द कृष्ण भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो हमें ग्रह वर्तानाम नहीं बनना है, हमें दृढ़ वर्तानाम भक्ति में कृष्ण वर्तानाम बनना चाहिए, कृष्ण के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। ये जानते हुए कि भगवान के अलावा हमें और कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ पर नारद मुनि कूट धर्मेषु, ये कूट धर्म मतलब धोखेबाजी का धर्म, इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे धोखेबाजी के धर्म को बाहर निकाल दिया गया है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम, धर्म प्रोज्जित कैटव कूट एक ही धातु से आता है, कैटव मतलब धोखेबाजी का धर्म। तो ऐसे जो भी धोखेबाजी के धर्म हैं जिनमें लोग कहते हैं अपना पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण करना यही सबसे ऊंचा धर्म है, माता पिता का सेवा करना, बच्चों का सेवा करना, समाज की सेवा करना, शरीर की सेवा करना, यही सब कुछ है, जो ऐसे धारणाओं का प्रचार करते हैं कि यही अपना धर्म है, ये कूट धर्म है। समाज धर्म, देश धर्म, मानव धर्म, ये अलग अलग धर्म। तो श्रीमद् भागवत के मत में ये सब कैटव धर्म, कूट धर्मेषु, और इसको क्या किया गया है, प्रोज्झित, प्रोज्झ प्रकृष्ट रूपेण उज्झ, उज्झ मतलब लात मार के बाहर निकाल देना, तो प्रकृष्ट रूपेण उज्जय मतलब बड़े तीव्रता से लात मार के हटा दिया, मतलब श्रीमद् भागवत में ऐसे कूट धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवत शुद्ध धर्म है, असली धर्म। असली धर्म मतलब वो जिसमें व्यक्ति केवल भगवान के शरण में जाता है, शुद्ध भक्ति करता है भगवान के, कोई स्वार्थ नहीं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, जो असली धर्म, सबसे ऊंचा धर्म, परम धर्म वो है जिससे कि हम भगवान श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कर सकें, और जो शुद्ध भक्ति बिना रुकावट की जाती है और बिना कोई हेतु के की जाती है। इसलिए कैटव धर्म में न अटके रहकर हमें केवल भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। पहले स्कंद में श्रीमद् भागवत के अंत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कई प्रश्न करते हैं, उनमें से प्रमुख प्रश्न वो करते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर खड़ा है उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वर्यान एष ते प्रश्नः कृतो लोक हित नृपा, वो कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने किए हैं हे परीक्षित महाराज, वर्यान बहुत ही उत्कृष्ट बड़े बढ़िया प्रश्न किए तुमने, धन्य हो तुम्हारे प्रश्नों का। क्यों, लोक हिताम, क्योंकि ऐसे प्रश्न जन साधारण के हित के लिए है, ऐसे प्रश्न करने से ही सारे संसार का हित हो सकता है। लेकिन शोक की बात है कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, क्या शोक की बात है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणम संति सहस्रशः, वो कहते हैं कि वास्तव में जो संसार में लोग हैं वो ऐसे प्रश्न नहीं करते, श्रोतव्यादीनि सुनने के लिए, बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, निर्णम संति सहस्रशः, लाखों लाखों विषय उनके पास होते हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, ऐसे लोग जो होते हैं आत्मतत्व को अपश्यताम नहीं देखते हैं। आत्मतत्व मतलब आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान। अपश्यताम मतलब नहीं देखते हैं, पश्यताम मतलब देखना, अपश्यताम मतलब नहीं देखना या नहीं जानना। तो ये लोग आत्म तत्व को, आत्म साक्षात्कार के मार्ग को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल देखते नहीं, क्योंकि उनका मन केवल संसार के विषयों में पड़ा हुआ है। गृहेषु गृहमेधिनाम, गृह में रहते हुए गृहमेधी हैं। गृहमेधी और गृहस्थ में अंतर होता है। गृहस्थ वो होता है जो गृह में स्थित होकर भगवान का आश्रय लेता है, वास्तव में अपना जीवन भगवान की भक्ति के लिए ही बिताता है, उसे गृहस्थ कहते हैं। लेकिन गृहमेधी वो होता है जो केवल कौटुंबिक जीवन में रहता है, लेकिन भगवान में कोई रुचि नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है। मेधी, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये शब्द का तात्पर्य है ईर्ष्या। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, मेधः का शब्द बुद्धि भी होता है, लेकिन इस संदर्भ में मेधी का अर्थ होता है जो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं दूसरों से। तो गृह मेधी का अर्थ ही है जलना दूसरों से। जो व्यक्ति अपने गृह में रहकर दूसरे कौटुंबिक लोगों के प्रति जलता है, ईर्ष्या रखता है, वो गृह मेधी कहलाता है। तो संसार में ज्यादातर लोग जो कौटुंबिक जीवन में रहते हैं, दूसरों से जलते ही हैं, ईर्ष्या ही करते हैं। उसकी प्रगति इतनी क्यों हुई, उसका उतना धन कैसे हो गया, इसलिए हमें भी दिखाना चाहिए कि हमारे पास भी कुछ है। हमें भी उनको दिखाना चाहिए कि हमने भी हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर लाया है, हमने भी हमारे घर में कलर टीवी लाया है। और हमेशा लोग अलग अलग तरह के पड़ोसियों से प्रभावित होते हैं और घर में आके दबाव डालते हैं, अरे हमारे पड़ोसी का लड़का है, उसने इतना कमा के लाया है, और देखो तुम कुछ कमा के नहीं लाते। वो मिक्सर ग्राइंडर लाया है आज इसने ये लाया है, और कल मोटरसाइकिल लाया है। तो इस प्रकार से दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके प्रभाव से हमारा जलन होता है। हम सहन नहीं कर सकते कि उनके पास इतना मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, अभी टीवी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो जलन। तो गृह मेधी मतलब जलन। दूसरों के सुख से बिल्कुल हम सुखी नहीं हो सकते, या कम से कम उदासीन तो होना चाहिए। अगर नरक की ओर वो लोग जाना चाहते हैं तो कम से कम दया भावना रखनी चाहिए या उदासीन रहना चाहिए। दया भावना रख सकते हैं कि बेचारे, उनके घर में अभी टीवी आया, उनके घर में ये आया, वो आया, बेचारे, कम से कम ऐसा तो भावना रखना चाहिए। लेकिन हमें जलना क्यों चाहिए उनसे? जब किसी को रोग हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बड़े दुखी होते हैं, तो क्या उनसे जलन करते हैं? नहीं, जलन नहीं करते। जब कोई दुखद घटना होती है तो हम क्यों उनसे जलन करें? तो उसी प्रकार से जब उनका भौतिक बीमारी बढ़ रहा है तो हमें जलना क्यों चाहिए उनसे? उल्टा हमें दया भावना रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी ये कहानी बताया करते थे कि एक बार एक घर में मेम साहब रहा करती थी। मेम साहब अपने पति को हमेशा बोलती थी कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, देखो पड़ोस में ऐसा है, वैसा है। तो पति बड़े तंग आ गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि घर में जो नौकरानी थी उसको बुखार आ गया, और मेम साहब को भी बुखार आ गया, दोनों को। लेकिन मेम साहब को 100 नंबर का बुखार था, और जो नौकरानी है उसको 104 बुखार हो गया। तो जब मेम साहब को पता चला कि मुझे 100 नंबर की बीमारी है, 100 डिग्री, और मेरे नौकरानी को 104, तो बड़ा गुस्सा आया। पति को बुलाया, ये कैसे हो सकता है कि मेरे घर में होते हुए मेरा केवल 100 नंबर और नौकरानी का 104 नंबर? तो पति बोलने लगे, अरे क्या मूर्ख जैसी बातें करते हो, 104 नंबर उसका है जरूर, लेकिन बुखार का नंबर है थोड़ी, उसके पास 104 रुपए हैं, तुम्हारे पास केवल 100 रुपए हैं, ये तो 104 बुखार है उसके पास। तुम तो सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा केवल 100 बुखार है, उसका 104 है। नहीं नहीं नहीं, मेरे होते हुए 104 कैसे उसके, मेरे से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बतला रहे थे कि संसार के बुखार को बढ़ाने के लिए सभी लोग इच्छुक हैं, मूर्ख हैं, ये सोचते नहीं कि दूसरों का बुखार बढ़ रहा है तो उनसे ईर्ष्या क्यों करें। उनका बुखार बढ़ रहा है ना, तो कम से कम उनको दवाई देनी चाहिए बुखार कम करने के लिए। लेकिन हम सोचते हैं नहीं नहीं उनका बुखार ज्यादा हो रहा है कि हमारा बुखार उनसे ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने एक टीवी लिया तो हम बड़ा टीवी भी उससे बड़ा टीवी लेंगे, उन्होंने एक गाड़ी लिया तो हम भी बड़ा गाड़ी लेंगे, लेटेस्ट मॉडल लेंगे, इससे महंगा वाला लेंगे। तो सभी लोग इस संसार में केवल बुखार बढ़ाने के कार्य में लगे हुए हैं बस, क्योंकि एक दूसरे से जलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि गृह में भी हमें नहीं बनना चाहिए जिसका जीवन का उद्देश्य है दूसरों से जलना। इसलिए भागवत धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। भागवत धर्म उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सर है। धर्म प्रोज्जित कैटवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम वास्तवम अत्र वेद वेद्यम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो ये श्रीमद् भागवत का धर्म है उन लोगों के लिए है जो कि मत्सर से मात्सर्य की भावना से अर्थात जलने की ईर्ष्या की भावना से परे हो गए हों। ऐसे ही लोगों को वास्तव में जो सत्य है वो पता चल सकता है। तो ये हुए गृह मेधिना। और ऐसे गृह मेधिना का क्या परिचय है और किस प्रकार के कार्य में वो लगते हैं वो सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। निद्रया ह्रियते वक्तम दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। वो कहते हैं कि ये लोग निद्रया ह्रियते नक्तम रात में निद्रा करते हैं, व्यवायेन च वा वयः रात में या तो सोते हैं या तो संभोग करते हैं। दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा और दिन में क्या करते हैं, अर्थ इह अर्थ को प्राप्त करने का धन को प्राप्त करने में समय बिताते हैं या तो कुटुंब भरणेन वा अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में। इस प्रकार से दिन और रात बीत जाता है। ये गृहमेदी का काम होता है। तो रात में काम होते हैं सोना और संभोग करना और दिन में काम होता है पैसा कमाना कुटुंब का पालन पोषण करना, बस ये है उनका सारे जीवन का काम। और आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं देहापत्य कलत्रादेशु आत्मसंयेशु असत्स्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। गृहमेदी का वर्णन कर रहे हैं जो कूट धर्म का पालन करते हैं और कहते हैं देह आप्त कलत्रा अपने देह में अपने बच्चों में अपनी बीवी में अपने धन में इसको ही सब कुछ मानते हैं और इस प्रकृति के कड़क नियमों के साथ में संघर्ष करते हैं। और ये जो उनके साथी हैं अपने बच्चे पत्नी धन घर आत्मसंयेशु असत्स्वपि ये मेरे सैनिक हैं जो मेरे साथ में युद्ध करेंगे माया के विरुद्ध प्रकृति के कड़क नियमों के विरुद्ध हमें युद्ध करना पड़ता है। बड़ा कड़क संघर्ष होता है, ये सभी को संघर्ष करना पड़ता है। और गृह में भी क्या सोचता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में मेरी पत्नी है साथ देने के लिए, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा धन है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, समाज में सब कुछ है, ये सब साथ में मेरे सैनिक हैं। आत्मसंयेशु संयेशु मतलब सैनिक, लेकिन ये सैनिक कैसे हैं, असत्स्वपि असत्सुख मतलब जो टिक नहीं सकते, टिकाऊ नहीं है वो। अगर हमारे साथ में ऐसे मान लो कि देश के सैनिक हों जो बिल्कुल कायर है, थोड़ा सा बंदूक सुनने से भाग जाएंगे, तो फिर ऐसे सेना से क्या फायदा। तो उसी प्रकार से मृत्यु के समय ये सैनिक हमको नहीं बचा सकते। मृत्यु के समय हमारे पति हमारे पत्नी हमारे बच्चे हमारे माता पिता हमारा बैंक बैलेंस कुछ नहीं बचा पाएगा हमें। गजेंद्र ने इस बात का अनुभव किया ना, आठवें स्कंद में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गजेंद्र हाथियों का राजा था, उसके पास कितने सारे रानियां थी, कितने सारे बच्चे थे, सारे हाथी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई व्यक्ति कोई हाथी उस समाज में गजेंद्र को पूछे बिना कुछ नहीं करता था, गजेंद्र की अनुमति की आवश्यकता होती थी, सभी लोग गजेंद्र की सेवा में लगे हुए थे। और गजेंद्र सोच रहा था कि मेरा जीवन देखो कितना महत्वपूर्ण है, मैं कितनों की सेवा कर रहा हूं, कितने लोगों का जीवन मेरे ऊपर निर्भर है, केवल उनके लिए मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से गजेंद्र अपने आप को बड़ा शक्तिशाली और भाग्यशाली समझता था। और एक दिन जब वो पानी में गए स्नान करने के लिए, तो वहां एक मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और गजेंद्र बड़े शक्ति से युद्ध करने लगा। लेकिन उस समय सारे जो उनके पत्नियां थी, रानियां थी और जो बच्चे थे, वो सब पानी से बाहर भाग गए, क्योंकि मगरमच्छ पानी का जानवर होता है और हाथी भूमि का जानवर होता है। तो सारे हाथी सोच रहे थे, हम पानी के भीतर मगरमच्छ को कैसे परास्त कर सकते हैं। अकेला गजेंद्र लड़ता गया, बड़ा शूरवीर और शक्तिशाली था, इसलिए 1000 साल तक लड़ाई जारी रख पाया। लेकिन अंततः क्योंकि मगरमच्छ पानी का जानवर है, इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली होते गया। फिर गजेंद्र ने जब देखा कि आत्मसंयेशु असत सपे, ये मेरा जो सैनिक है पीछे, कुछ मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं, आखिर में मुझे ही देखना पड़ेगा अपने बाप, कोई कुछ नहीं देखने वाला मृत्यु के समय, ऐसे सैनिकों का कोई लाभ नहीं है। तो फिर क्या किया गजेंद्र ने, वहां का कमल पुष्प उठाया, भगवान श्री हरि को अपने सूंड पकड़कर अर्पण किया, सुंदर प्रार्थनाएं बोली। तो फिर वैकुंठ से तुरंत भगवान श्री हरि आए और मगरमच्छ की गर्दन काट दी अपने सुदर्शन चक्र से और उद्धार कर दिया दोनों का, गजेंद्र का और मगरमच्छ का। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी जो भी हमारा सब कुछ संसार में है, आत्मसंयेशु असत स्वपेक, जो भी हमारा देह है, हमारा शरीर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे रिश्तेदार, हमारा धन, हमारा समाज में नाम इज्जत, जो लोग आज हमारे पास आकर हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं, कल जब हमारी परिस्थिति बुरी हो जाएगी, सब हमें पहचानना बंद कर देंगे। तो यह है संसार का नियम। इसलिए अपने परिवार में, अपने संसार में प्रमत्त हो जाते हैं। प्रमत्त मतलब पागल, प्रकृष्ट रूपेण मत्तः मतलब जो व्यक्ति शराब पीकर मत्त हो जाता है, प्रमत्त मतलब उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है, निधनम कि मेरा अंत आने वाला है, पश्यन अपि न पश्यति, वो देखता है कि मेरा अंत आने वाला है, ये लोग कोई मुझे बचा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, पश्यन अपि न पश्यति, तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। ये है गृहमेधी की परिस्थिति, सोचता है कि इसी में रमण करता है अपने संसार में ही, गृहव्रताणाम, इसे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखता है। और मृत्यु आते हुए भी फिर भी प्रार्थना करता है, डॉक्टर से बोलता है, मुझे 1 साल और दीजिए, मुझे और फैक्ट्री एक स्थापित करना है, मुझे और 1-6 महीने आप दिला दीजिए, मेरे बच्चे को सेटल करना है, मुझे 2 महीने और दीजिए, मेरे बच्ची का शादी कराना है। प्रमत्त, पूरी तरह से प्रमत्त हो जाते हैं, ये जानते नहीं कि यमराज का जब बुलावा आता है तो कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। परीक्षित महाराज के प्रश्न था कि मृत्यु के द्वार पर जो खड़ा है उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, और उस संदर्भ में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया था उनको कि गृहमेधी क्या होता है, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गलत काम करता है और सही बात क्या करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छताभयम्। कि हे राजन, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान श्री हरि हैं, जो हम सबके स्वामी हैं, उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, श्रोतव्यः सुनना चाहिए, कीर्तव्य मतलब हमेशा बोलना चाहिए, स्मर्तव्य हमेशा स्मरण करना चाहिए, च इच्छता भयम्, फिर हम भय से मुक्त हो सकते हैं, मृत्यु को पार कर सकते हैं। और इसलिए आगे इन 4-5 श्लोकों में ही सुखदेव गोस्वामी सारे भागवत का सार दे दिया है। और फिर बताते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। वो कहते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं जीवन में, सांख्य योग कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम, स्वधर्म परिनिष्ठया, अपना स्वधर्म का पालन अच्छे ढंग से कर रहे हैं, हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थी अच्छी बन रहे हैं, ब्रह्मचारी तो अच्छा ब्रह्मचारी बन रहे हैं, हम व्यवसायी हैं व्यापारी हैं तो अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार सब कर रहे हैं। लेकिन इन सब की परीक्षा कब होती है? जन्म लाभ पर पुंसाम, वास्तव में इन सब चीजों का लाभ, इनकी परिपूर्णता किसमें है? अंते नारायण स्मृति ही। अंत में जब हम नारायण श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे उसमें हमारा सच्चा हित है, हमारे इन सारे कार्यों की परिपूर्णता है, हमारे इन सारे कार्यों की परीक्षा उस समय होगी। तो हमारे सारे जीवन की व्यवस्था हमें ऐसे करनी चाहिए कि हम अंत में नारायण का कृष्ण का स्मरण कर पाए, और इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। केवल इस कार्य के लिए हमें जीवन में समय ज्यादा से ज्यादा बिताने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम इसको भूल जाएंगे तो फिर केवल कष्ट ही कष्ट होगा। लेकिन गृह में भी इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि इतना दुख का अनुभव करते हुए भी इतना प्रमत्त हो जाते हैं, अपने अंत को नहीं देखते, इसलिए उनको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है। महाभारत में बताया गया है कि अंधकूपम कैसा होता है, जो अंधकूप है संसार का, ऐसा कुआं होता है जिसमें कोई अंत ही नहीं, नीचे 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 जाता, अंधकार केवल, आखिर में व्यक्ति गिर जाता है, कोई पानी नहीं, बेचारे की हड्डियां टूट जाती हैं, कम से कम पानी में गिरा होता तो हड्डियां नहीं टूट जाती, तैर के कुछ ना कुछ कुछ पकड़ के वो जीवित रह पाता था। लेकिन ऐसे संसार कूप में पानी भी नहीं है तो गिर जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, बेचारा हड्डी टूटकर इतना दर्द होता है और नीचे गिरा पड़ा है अंधकार में, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, उल्टा वहाँ चूहे शरीर के ऊपर से घूम रही हैं, कॉकरोच आ रहे जा रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े इधर उधर घूम रहे हैं, चिल्ला रहा है, जैसे हम प्रभुपाद में बता रहे हैं, क्या कहते हैं, भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए किंतु उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता। तो ये व्यक्ति भी उस अंधकूप में चिल्ला रहा है, कोई बचाओ बचाओ बचाओ, कौन है उधर बचाने के लिए? मृत्यु के समय हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, हमारे पति हमारे पत्नी हमारे बच्चे हमारे डॉक्टर, हाँ सब तैयार है वहां, लेकिन कौन क्या कर सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। कितना भी चिल्लाएंगे हम, यमराज जब आएंगे लेकर भी जाएंगे, और ये कुएं में रहता है बेचारा इतना पीड़ित इतना पीड़ित, लेकिन अंत में जब मुंह खोलता है कुछ ऊपर देखने के लिए क्या है, अचानक शहद का मध का एक जो बूंद है ऊपर कहीं से, न जाने शायद कहीं ने मधुमक्खियों ने कुछ बनाया होगा ऊपर, वहां से एक बूंद शहद पानी में अपना मुंह में गिर जाता है, अरे वाह कितना अच्छा स्वाद है, तो आ करके खड़ा रहता है मुंह खोलकर, एक और बूंद शहद का आया आया आया, अरे वाह 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 कितना आनंद आया, लेकिन कितने मच्छर काट रहे हैं, हड्डी टूट गई है, अंधकार है, कितना कष्ट है, नहीं देखता, वो एक बूंद शहद का उसको मिल जाता है, वाह 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 वाह, उसके लिए इतना सब कष्ट सहन के लिए वो तैयार है। यह है गृह नदी का जीवन। तो उसी प्रकार से ये संसार में भी थोड़ा कुछ सुख मिलता है इधर उधर। अब बच्चे आते हैं तोतली बोली ने पिताजी पिताजी बोलते हैं, वह पिताजी सोचता है दिन भर फैक्ट्री में जाके नरक के समान मैंने दाढ़ उतना परिश्रम किया, दिन भर पसीने तेल ये वो मशीन का तेल न जाने क्या क्या करके आया है, लेकिन घर में आके फिर बच्चा पिताजी बोलता है, वाह सारा अपना दुख भूल जाता है। कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं, जब मैं घर में आता हूँ तो जब मेरे पत्नी के दो मीठे शब्द सुनती हूँ वो आके ठंडे पानी देती है मुझे और थोड़ी हंस देती है, और बच्चा मेरे पास आता है गोदी में चढ़ जाता है तो मेरे सारे तकलीफ में भूल जाता है। तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् नपि न पश्यति, बस थोड़ा एक बूंद आ गया सब भूल जाते हैं, वाह
अभी फिर से अगले दिन वही नरक में जाने के लिए उत्साह, बिल्कुल उत्साह, कोई रोक नहीं सकता गृहव्रताणाम। और कभी कभी पत्नी अगर रूठ के बोले, जो कि अक्सर होता है, कई बार हो सकता है, तो बेचारा क्या करे, इतना दिन भर परिश्रम करता है और फिर रात को आकर पत्नी ठीक से नहीं बोले। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि जिस घर में पत्नी पति से मीठे स्वर में नहीं बोलती वो रेगिस्तान है। तो वो घर में आता है बेचारा, अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे भी उल्टा जवाब देने लगते हैं, अपनी बुद्धि चलाकर कुछ काम करते हैं, पत्नी भी उधर अपने इसमें रूठ जाती है, घर में ये नहीं वो नहीं, वो नहीं देते हमको, वो नहीं सोना नहीं देते, ये नहीं देते हो, देखो पड़ोस में इतना बड़ा टीवी, ये वो। फिर पत्नी के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, लेकिन वो एक बूंद आता है ना शहद का, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। ये है दुखद परिस्थिति आजकल के, आजकल नहीं हमेशा से चलते आ रहा है संसार की। कोई भी कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं रखता, इसलिए सच्चा आनंद इसी में है। लेकिन ये केवल गृहस्थियों के लिए नहीं है, गृहस्थ मतलब सच्चा जो कृष्ण भक्त है या गृह मेधी, उनके लिए नहीं, सबके लिए, क्योंकि ये संसार ही एक अंधकूप है। जो भी पड़े हैं इस संसार में, चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, गृह मेधी हो, सभी अंधकूप में पड़े हुए हैं। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से हमें ये अंधकूप से निकाल दें। श्रीमद् भागवत में भी गोपियां प्रार्थना करती हैं भगवान से, बड़ा सुंदर श्लोक है, आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वर हृद्विचिन्त्यम अगाध बोधैः संसार कूप पतितोत्तरणावलम्बम गेहं जुषामपि सदा पहचान बंधम। गोपियां प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, हम आपके चिंतन करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपके चरण कमलों का उदय हमारे हृदय में हो, यही हमारी एकमात्र प्रार्थना है। ये चरण कमलों का उदय हृदय में प्राप्त करने के लिए योगेश्वरेर हृदि विचिन्त्यन अगाध बोध है। योगी लोग बड़े तपस्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं कि आपके चरण कमल उनके हृदय में जागृत हो जाएं। अगाध बोध है, जो बड़े से बड़े ज्ञानी होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो भी ज्ञान योग के मार्ग से आपके वही चरण कमलों का उदय हृदय में करने के लिए बड़ी तपस्या करते हैं। और हम तो कहां गेहम जुषाम अपि सदा, हम तो केवल साधारण गृह में रहने वाले स्त्रियां हैं, हमें क्या ज्ञान है, हमें क्या योगाभ्यास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हम संसार कूप पतित, हम इस संसार के कूप में हमारा पतन हो गया है, लेकिन आप उत्तरण, आप उद्धारण करने वाले हैं, इसलिए कृपा करके हमारा उद्धार करें, ताकि इस गृह में, इस संसार के कूप में रहते हुए भी आपके चरण कमलों का उदय हमारे हृदय में हो जाए। तो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, चाहे हम ब्रह्मचारी हों, चाहे गृहस्थ हों, वानप्रस्थ हों, सन्यासी हों, जो भी हों, कि हमें इस संसार में रहते हुए संसार के माया से प्रभावित न होकर केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने की शक्ति हमें दें, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इसलिए सच्चे सैनिक कौन है हमारे पास में, जो भक्तों का संग है, वही हमारे सैनिक हैं, वही हमें अंततः मदद कर सकते हैं। और उनके अगर हम संग लेंगे, उनका आश्रय लेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि? कोई मतभेद विरोध?
हम यहाँ इतना सुनते भी है और लेकिन थोड़ा सा बाहर जाने के बाद भी फिर वही चक्कर में हम क्यों फंस जाते
हैं। प्रमत्तः आदमी जब नशे में हो जाता है ना, उसको क्या पता चलता है? आप उपदेश कीजिए नशेले व्यक्ति को। कभी प्रयास किया है किसी ने, भक्तों ने, जो नशे में है, उन्मत्त है, उसको प्रचार कीजिए शरीर आत्मा का अंतर है, कृष्ण भगवान है, उसका क्या रिस्पांस मिलता है? उसी प्रकार से यहां संसार में भी जो प्रमत्त तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति देहापत्व कलत्रादिषु आत्मसंज्ञेषु असत्पति, वो लोग अपने अपने इसके उन्मत्त हैं, अपना कुटुंब, अपना पैसा, अपना सब कुछ है, और क्या भक्ति करना है? करेंगे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा कुछ जाएंगे मंदिर, कभी कभी जाएंगे, इतना सीरियस क्या होना है? ये नशा इतना शक्तिशाली होता है, मंदिर में आने के बाद में भी छूटता नहीं है। मंदिर में बाहर जाने की बात तो दूर है, मंदिर में आने पर भी छूटता नहीं है, क्योंकि वहां की चेतना लेकर आते हैं, क्योंकि संग वहां ज्यादा होता है और यहां संग कम होता है। 24 घंटों में कितना समय हम मंदिर में बिताते हैं? ज्यादा समय हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में, बाहर समाज में, इसलिए आदत छूटती नहीं है। इसलिए मंदिर में भी आते हैं तो वही बाहर की बातें काफी चलती हैं, भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं, फिर भी निकल जाते हैं संसार की बातें। भगवान के लिए भोग बना रहे सभी लोग बैठकर, 20-25 लोग बैठे हैं, काट रहे हैं सब्जी, लेकिन बात कर रहे हैं कुटुंब की, कृष्ण की नहीं। हम कुकिंग कर रहे हैं लेकिन बात हो रही है बाहर की। हम प्रचार कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं लेकिन मन उधर। तो ये किस लिए है? प्रमत्तः, केवल नशा की वजह से। वो नशा छूटना बड़ा कठिन है, इसलिए नशा को छुड़ाने के लिए हमें कम से कम फिर से नहीं पीना चाहिए शराब, कम से कम वो पहले, फिर नशा अपने आप छूट जाएगा अगर नशा नहीं करेंगे तो। और उसी प्रकार से ज्यादा भक्तों का संग करने से धीरे धीरे ये बाहर का नशा कम होते जाएगा। इंद्र तृप्ति का नशा सबसे बड़ा नशा है, सबसे खतरनाक नशा है, और वो इंद्र तृप्ति ऐसे वातावरण में हो जाता है। हमारा सब कुछ सुरक्षित है, हमारा अपना घर है, अपना पैसा है, अपना पत्नी पति है, अपने बच्चे हैं, सब सुरक्षित चल रहा है, तो ये भी एक नशा है कि अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो जीवन में गड़बड़ करते हैं, जीवन को सुखी नहीं होने देते, दुख देते हैं, ताकि उसकी सुरक्षा की भावना जो है वो थोड़ा नष्ट हो जाए, ताकि कम से कम मंदिर में बार बार आए भगवान का आश्रय लेने के लिए। तो जिसका गृहस्थ जीवन ठीक ठाक चल रहा है, मतलब भगवान की कृपा इतनी नहीं हुई उसके ऊपर। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एकमात्र आश्रय हमारा यही है, आत्मसंज्ञेषु असत्सपि, इनके आश्रय नहीं ले सकते, एकमात्र कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए, तब तक नहीं सुधार हो सकता है जीवन में। ये नशा तो बहुत जन्मों का नशा है। इस जन्म में कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है, उसको शराब छोड़ने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, दूसरों को भी कितना कष्ट करना पड़ता है उसको छुड़वाने के लिए। हमारे तो अनादिकाल से, करोड़ों जन्मों से ये नशा है, तो उसका छूटना तो कठिन होगा ही, स्वाभाविक है। ठीक है, पीछे जा। क्या है, कभी कभी ये विषय भी ऐसे होते हैं कि बीच बीच में थोड़ा ऐसे बोलना पड़ता है।
जब हम भक्ति में आ गए और भक्ति करते हुए भी हमारे दूसरों का दोष देखना और दूसरों के एक दूसरे के प्रति आलोचना करना ये आदत नहीं जाती है, तो इसका क्या कारण है?
वही जवाब है, नशा उतरा नहीं। गृह मेधी, मेधी मतलब जीवन का आधार ही है जलना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से द्वेष करना, गृह में भी मैं, यही तो जीवन का सार है। बाहर जाके देखिए लोगों को आनंद इसी में आता है, दूसरों को क्या दुर्भाग्य हुआ, उनके जीवन में क्या दुर्घटना हुई, किसके घर में क्या झगड़ा चलता है, ये सब बातें सुनने में ही उनको आनंद आता है, इसी में उनका रस है। यह है देह में भी, गृह में भी। तो ये आदतें हम सब में मुश्किल से जाती हैं। इसलिए अगर हम केवल भक्तों के संग में आके यहां भी कृष्ण को केंद्र में रखें तो ठीक होगा। सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम भक्तों के संग में आकर कुछ बाहर की बातें करें, बाहर की चीजें करें, नहीं। जैसे कि हम भक्तों के संग में आए और भक्तों के संग कहें चलो हम सिनेमा जाते हैं, और कोई उनको बताए कि अरे सिनेमा गए, नहीं नहीं सत्संग में गया था मैं, भक्तों के संग में गया मैं सिनेमा। तो सत्संग का मतलब ये नहीं कि केवल हम भक्तों के संग में रहें, भक्तों के संग में रहकर करके करते क्या है वो भक्ति है, भक्ति के कार्य हमें करने चाहिए तब वो सत्संग हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल भक्तों के संग में रहें, अगर भक्तों के संग में रहें और प्रजल्प करें, दुनिया की बातें करें, इसकी आलोचना करें, उसकी टीका करें, उसकी निंदा करें, तो ये भक्ति नहीं है, ये सत्संग नहीं है। इसलिए सत्संग का मतलब है जिस संग में आकर हम केवल कृष्ण की बातें करें, कृष्ण की सेवा से संबंधित जो बातें हैं वो करें, दूसरे भक्तों में दोष नहीं ढूंढें, टीका टिप्पणी नहीं करें दूसरों के बारे में, केवल अपने दोषों को देखें कि हमारे अंदर दोष कितने हैं और इन दोषों को कैसे सुधारा जा सकता है, और हमारे स्वयं के दोषों को सुधारने के लिए दूसरे। इसलिए आनंद हमें केवल कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा में रखनी चाहिए, बस ऐसा करेंगे तो ये हमारी जो प्रवृत्तियां हैं जो अनादिकाल से चलती आ रही हैं वो छूट जाएंगी धीरे धीरे से। और हम भी अगर हम देखते हैं कि कोई भक्त हमारे पास आकर ऐसे सब चीजों में रुचि रखना चाहते हैं, हमको भी इसमें खींचना चाहते हैं, तो हमें उनको ठुकरा देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमें इन चीजों में रुचि नहीं है, आप हमारे सामने आके कम से कम मंदिर में ऐसी बातें मत कीजिए, या कम से कम सेवा करते समय ऐसा नहीं कीजिए, हम ऑल्टर सेवा कर रहे हो, पीछे सेवा कर रहे हो, किचन में हो, मंदिर में हो, प्रचार में जा गए हो, कार्यक्रम में गए हो, जो भी हम सेवा कर रहे हो, केवल कृष्ण को ही केंद्र में रखना चाहिए, हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली है। बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो अभी क्या ये प्रजल्प करना मेरे लिए उचित है, ये दूसरे भक्त का दोष ढूंढना मेरे लिए क्या उचित है। श्रवण से हमारी बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है, और ऐसे शक्तिशाली बुद्धि से हमारी जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनका हम दमन कर सकते हैं। ठीक है
कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा कि जब पति घर आता है तो मीठे शब्द बोले तो माया में अटक जाता है
और नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने ऐसा नहीं बोला है, कल सुदर्शन हमसे झगड़ा करने आएंगे फिर।
कृष्ण
नहीं, हमने ऐसा कहा
कठोर वचन बोले तो उनको दर्द होता है, तो पत्नी का क्या कर्तव्य होता है कि वो उनको कैसे रहना चाहिए?
नहीं, मीठे वचन बोलने से माया होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कठोर वचन भी बोले वो भी ठीक है, अगर अगर उसके भलाई के लिए हो, अगर पत्नी कठोर वचन बोले, लेकिन सही ढंग से कठोर वचन बोलना चाहिए, पत्नी का भी कर्तव्य होता है। शास्त्र में बताया जाता है कि पत्नी एक पति के लिए एक आधार होती है, गलत मार्ग से जाने से उसको रोकती है, बचाती है, इसलिए पत्नी को सही होना बहुत जरूरी है। पति भी गलत मार्ग में जाए उसको खींच के ले आने के लिए पत्नी वास्तव में पति का सबसे बड़ा जो साथी है। मीठा लेकिन भक्ति भावना से हम देखें, मीठा हो या कठोर कठोर हो, अगर भक्ति के लिए अच्छा है तो पत्नी हो या पति हो, दोनों को जो अनुकूल है, जो अच्छा है, भलाई के लिए है, वो वचन करने चाहिए, लेकिन साथ साथ बुद्धिमान भी होना चाहिए। जो भलाई के लिए भी कहना हो, जो कठोर भी शब्द कहना हो, तो ढंग भी होता है कहने के लिए, अगर हम सही ढंग से नहीं बोलें तो उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। तो संसार में ये महत्वपूर्ण केवल नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही बात अगर हम थोड़े मीठे ढंग से बोलें तो स्वीकार किया जा सकता है, अगर केवल चिढ़कर हम बोलें तो नहीं स्वीकार होगा। तो ये बात है, तो केवल ऐसा नहीं है कि मीठी बात करने से माया है, ऐसा नहीं है। कभी कभी मीठी बात करने से प्रोत्साहन भी मिल सकता है, और कभी कभी कठोर बात करने से प्रोत्साहन मिल सकता है। कभी कभी मीठी बात करने से माया में गिर सकते हैं, कभी कभी कठोर बात करने से भी माया में गिर सकते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार हमें बुद्धिमान होना चाहिए, कैसे, किस समय, किसके साथ में, किस तरह से बात करना चाहिए। हमारे एक वचन से दूसरों की भक्ति बढ़ सकती है, दूसरों की भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए कभी कभी लोगों की आदत होती है फट करके हम कुछ बोल देते हैं, नहीं, हमें सोचना चाहिए बहुत गहराई से, क्योंकि हमारे एक शब्द का बहुत प्रभाव पड़ सकता है सामने वाले पर। 10 बार हमें सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले की क्या दशा होगी, मानसिक दशा। अगर हम उसकी जगह में होते और किसी ने हमारे साथ में वही बोला होता तो हम क्या सोचते, हमारे मन में कौन सी धारणा रहती। इसलिए भक्त को हमेशा बहुत होशियार रहना चाहिए, सोचना चाहिए बोलने के पहले। ये कोई भक्ति की बड़ी बात नहीं है, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। साधारण व्यवहारिक जीवन में, संसार के जीवन में भी ये बातें हमें याद रखनी चाहिए, तो भक्ति में और कितनी ज्यादा रखनी चाहिए। सही बात। हाँ जी, कब प्रश्न था, इधर एक प्रश्न, फिर बाद में पीछे।
हरे कृष्ण गुरु, जैसे आपने बताया कि इस संसार में जो भौतिक जगत में सुख तो नहीं है, लेकिन हम जब भक्ति में आते तब ऐसा होता है कि हमें जो हमसे चार चीजें छूटती है तब हमें दुख महसूस होता है। क्या ये दुख के परिभाषा ऐसे दुख से ही सुख की परिभाषा आती है, बोले तो दुख है करके सुख है, अगर दुख ही नहीं होता तो सुख को कौन महत्व देगा।
इसलिए ये द्वंद्वों का संसार है, दुख और सुख दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो बाजू हैं, अंतर नहीं है इसमें। लेकिन केवल भ्रम में आकर हम सोचते हैं कि सुख हमारे लिए अनुकूल है, दुख हमारे लिए प्रतिकूल है, ये प्राप्त करने लायक है, दूसरा त्याग करने लायक है। ये संसार में सब द्वंद्वों में पड़ता है, क्योंकि हम अभी तक ये द्वंद्व में पड़े हुए हैं, इसलिए चार नियमों को पालन करने में या चार वर्जित कार्यों को त्याग करने के लिए हमें दुख महसूस होता है शुरुआत में, लेकिन बाद में जाकर सुख महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। इसको कहते हैं सत्वगुण की तपस्या। जो वर्जित कार्यों को त्यागते हैं, थोड़ा कठिनाई होती है लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो रजोगुण की तपस्या क्या होती है कि अभी हम सुख लेते हैं बाद में बहुत दुख लेते हैं, और तमोगुण क्या है, तमोगुण का आनंद, अभी भी दुख बाद में भी दुख बीच में भी दुख, दुख ही दुख। तो हमें सत्वगुणी आनंद लेना चाहिए, मतलब पहले थोड़ी तपस्या, और तपस्या का फल मीठा, दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम सबसे मीठा।
श्लोक में मूढ़ का अर्थ दुष्ट क्यों बताया?
क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है इस प्रकार से वो दुष्ट ही होता है, क्योंकि कृष्ण के खिलाफ गया है, वो कृष्ण के नियम का पालन नहीं करना चाहता, केवल अपने धन पे, अपने बल पे, इतना घमंड हो जाता है उसको कि भगवान और भगवान के भक्तों के सामने झुकना नहीं चाहता है, इसलिए वो दुष्ट कहलाता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ति ननाधमा माया पहरित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। मूढ़ भगवान के शरण में नहीं जाते, दुष्ट लोग होते हैं। आखिरी प्रश्न,
आपने कहा कि कोई अगर हमें
ऑन करना चाहिए।
हरे कृष्णा, आपने कहा कि कोई अगर माया में हमें ढकेल रहा है, ले रहा है, तो हमें उसका सत्संग छोड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि हमें अपना सत्संग भी उन्हें देना चाहिए कि वो भक्ति में आ जाए।
हाँ, अगर कोई हमें माया में ले जा रहा है तो उसका सत्संग नहीं, उसका असत्संग सुनना चाहिए। सत्संग मतलब भक्ति का संग, तो वो असत्संग हो गया, सत्संग नहीं। तो हमें असत्संग को त्यागना चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि हमें दूसरों को संग देना चाहिए, सत्संग देना चाहिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके असत्संग से हमारा सत्संग नष्ट हो जाए, या उनका असत्संग हमारे सत्संग से ज्यादा शक्तिशाली हो, तो फिर हमें थोड़ा होशियार रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनका सुधार करते करते हमारी भक्ति ही बिगड़ जाए। और वैसे भी सुधारने के लिए भी हमारा कोई अधिकार होना चाहिए। हो सकता है इन भक्तों को हम कुछ बोलें तो वो बुरा मानेंगे, तो फिर उससे अच्छा ये कि हम वहां नहीं रहें। हमें केवल भक्ति में सिंसियर और सीरियस रह के उन भक्तों का संग करना चाहिए जो वास्तव में सीरियस और सिंसियर हैं, जो वास्तव में जिन्होंने अपना संग भगवान, अपना ध्येय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को बनाया हुआ है। लेकिन टीका नहीं करनी चाहिए थी। हमें ये नहीं करना चाहिए मैं सिंसियर हूं वो नहीं है, नहीं। भक्ति के दृष्टि से हर एक भक्त हमसे बढ़कर है, हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। निंदा नहीं करनी चाहिए किसी भी भक्त की, लेकिन हमें बुद्धिमान रहना चाहिए कि हमें भक्तों के संग में आकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या किन विषयों के बारे में बोलना चाहिए, किन विषयों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये सब हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके निश्चित रखना चाहिए।